ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदपि ओङ्कार एव ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं। ओम जो है ये सब कुछ है, इसे कहा गया है। और सर्व चीज काल में नियमित और काल से अतीत जो है वो भी सब कुछ ओंकार ही है। यच्चान्यत्रिकाल अतीतम, तीन काल से ऊपर जो है वो भी ओम है और तीन काल के अंदर जो है वो भी ओम है। विश्व व्यापक भी है, विश्व अतीत भी है, विश्व के अंदर भी है, विश्व से बाहर भी है। परब्रह्म तत्व भी है, निर्गुण स्वरूप है और सगुण ईश्वर भी है। ये दोनों की प्रतीक प्रणव है। अयम च परंचा परंच ब्रह्म, वो प्रश्न उपनिषद में विप्रलाद महर्षि ने कहा था कि ये परब्रह्म भी है, अपरब्रह्म भी है, अव्यक्त भी है, व्यक्त भी है। इसका अर्थ है त्रिकाल अतीत और काल के अंदर रहने वाला ये दोनों चीज। अचान्य त्रिकाल अतीत तदप्योंकार एवा, हर एक चीज ओम प्रणव है। सर्वं हि तद् ब्रह्मा अयमात्मा ब्रह्मा सो यमात्मा चतुष्पात, सब कुछ ओंकार बोल दिया। अभी कहता है सब कुछ परब्रह्म है। सर्वं हि तद् ब्रह्मा, वेरिली ऑल दिस इज द सुप्रीम एब्सोल्यूट ब्रह्म। दो चीज सब कुछ कैसे हो सकता है? अगर मैं सब कुछ हूँ, आप ही सब कुछ कैसे बनेगा? दो सब कुछ छोड़ी हो सकता है। ओंकार सब कुछ है, अभी ब्रह्म भी सब कुछ है। ये कैसा दो चीज इन्फिनिट कैसे हो गया? इसका अर्थ है वह यही है, अयमात्मा ब्रह्मा स्वयमात्मा चतुष्पाद, जिसको ओंकार कहा है वही परब्रह्म है। इसलिए वो दो चीज नहीं है। परब्रह्म तत्व निर्दिष्ट किया जाता है ओंकार के द्वारा। यह सब कुछ ब्रह्म है। सर्वं खल्विदं ब्रह्मा, ये छांदोग्य उपनिषद के लिए कहना है। सब कुछ ब्रह्म है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ अगर समझ लिया तो सारे वेदांत का अर्थ समझ लिया। अगर इसका अर्थ नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा। अभी सर्व का अर्थ जानना चाहिए। सर्व माने क्या होता है? सब कुछ माने क्या मतलब है? सब कुछ ब्रह्म है, कई ब्रह्म थोड़ी होता है। सब कुछ माने पेड़ भी ब्रह्म है, पत्थर भी ब्रह्म है, मृदंग ब्रह्म है, हारमोनियम ब्रह्म है, ऐसा थोड़ी है, अलग अलग किस्म की ब्रह्म। सर्व का अर्थ व्याकरण की सर्वनाम का दृष्टि से नहीं है। हमारे सर्व शब्द का लक्षण जो है इसमें जरा सा परिवर्तन को लाना पड़ेगा। हमारी दृष्टि से, जीव की दृष्टि से सर्व का अर्थ होता है बहुत कुछ, कई चीजों की मिलने से सर्व बोलते हैं। यहां सर्व का अर्थ सर्व सामान्य सत्ता जो अखंडित रूप से स्थित है। इस मंत्र का व्याख्यान करते समय चांदोग्य उपनिषद में आचार्य शंकर कहते हैं सर्वम का अर्थ है बहुत कुछ, ऐसा मतलब नहीं है, कई चीज, ऐसा अर्थ नहीं निकलता है। इसका अर्थ यह है जिसका आधार, सब चीजों की आधार जो है वही परम तत्व है। सबकी तत्व एक है, आधार है, मूल एक ही चीज है। नाम रूप का दृष्टि से सर्वत्र ब्रह्म है ऐसा नहीं कहते हैं, सच्चिदानंद की दृष्टि से कहते हैं। यह दुनिया में पांच चीज होते हैं, कहते हैं पांच चीज। क्या चीज है? हर एक चीज में, हर एक विषय में, हर एक वस्तु में, व्यक्ति में पांच चीज दिखाई देते हैं। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यंश पंचकम आद्यमत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम। नाम रूप सच्चित आनंद, ये पांच चीज हर एक चीज में है। और नाम रूप को जगत बोलते हैं, सच्चित आनंद को ईश्वर बोलते हैं। और जहां नाम रूप है वहां सच्चित आनंद भी है। अगर वो सच्चित आनंद नहीं होता, नाम रूप नहीं दिखाई दे होता। जहां जहां लहरें हैं वहां वहां समुद्र भी है। अगर समुद्र नहीं होता, लहरें कहां से उड़ते? अच्छा, अभी नाम रूप को प्रपंच कहा दिया है। आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम, आद्यम त्रय माने ये तीन चीज सत चित आनंद, यही परब्रह्म है, ईश्वर है और नाम रूप जगत है। और जगत का लक्षण नाम रूप बताने का अर्थ क्या होता है, नानात्व का अर्थ है। जहां भी नाम रूप है वहां नानात्व है, वैरायटी डाइवर्सिटी। नाम रूप के वजह से ही हम नानात्व को देखते हैं, अलग अलग रंग है, अलग अलग किस्म की क्रियाएं चलते हैं, अलग अलग व्यक्तियां हमारे सामने खड़े हैं, इसका मतलब है अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है। जैसे अलग अलग प्रकार की लहरें समुद्र में हैं और इनके सर्वाधार समुद्र है, इसी प्रकार हरेक नाम रूप का आधार परब्रह्म तत्व है। और आधार का अर्थ यह है घी बर्तन में रखा है या बर्तन घी का आधार है, इस मतलब का आधार नहीं है। घी बर्तन में है, घी का आधार कौन सा है, बर्तन। ऐसी मतलब नहीं है समुद्र लहरे के आधार जैसे, वो आधार और आधे एक ही है, उधर अलग नहीं है। बर्तन और घी एक ही नहीं होते, अलग अलग चीज है। लेकिन यहाँ समुद्र और लहरे एक ही चीज है, समुद्र बर्तन का माफी नहीं है जिसमें लहरे बैठे हुए हैं। इसी प्रकार हम समझना चाहिए नाम रूप के अंदर सच्चिदानंद जब जैसा है आधार रूप। जैसे कोई भोज उठाता है आदमी, पीठ के ऊपर भोज उठा के जाता है, ये भोज का आधार पीठ है, लेकिन इस मतलब से ब्रह्म आधार नहीं जगत का। जैसे ऊपर से जगत रखा है, नीचे से ब्रह्म बैठा है, ऐसा मतलब नहीं है। यहाँ आधार आधे का अर्थ को भी समझना पड़ेगा जब हम नाम रूप का आधार ब्रह्म जैसे समझेंगे। नाम रूप प्रपंच ब्रह्म में आधारित इस प्रकार है, जैसे लहरे समुद्र में आधारित है, जैसे स्वप्नावस्था हमारे जागृत चेतना में आधारित है, जैसे हमारे मानसिक क्रियाएं सब मन में आधारित है, और अद्वैत वेदांत में कहते हैं जैसे सर्प रज्जु में आधारित है, ये सभी कहते हैं। सर्प आप रस्सा में देख लिया तो वो रस्सा और सर्प अलग अलग नहीं है, दो चीज नहीं है, वो सर्प रज्जु ही है। वो रस्सा को ही आप सर्प बोल देते हैं, वैसे ईश्वर को भी, ईश्वर को खुद उनकी सत्ता को ही आप बोलते हैं जगत, ये अलग चीज नहीं है। जिस चीज को आप देखते हैं सर्प रूप में, जिसको आप सर्प नाम से पुकारते हैं, जिसको देख के डरते हैं, कूदते हैं उसके ऊपर, यही सच्चाई में केवल रस्सा ही है। रस्सा सर्प बन करके बैठा नहीं उधर, परिणाम होकर के, वो पैदा थोड़ी हुआ सर्प उधर। इसी प्रकार ईश्वर जगत बना नहीं है, परिणाम नहीं है। तीन प्रकार की सिद्धांत होते हैं, एकदम फजूल बात है, थोड़ा से बताएंगे आपको इसके बारे में। न्याय वेदांत, न्याय और वैशेषिक का सिद्धांत एक है, सांख्य का सिद्धांत एक है, वेदांत का सिद्धांत और कुछ है। न्याय वैशेषिक का सिद्धांत यही है, ये आरंभवाद कहते हैं उसको। आरंभवाद माने कार्य कारण से बिल्कुल ही अलग, कोई कनेक्शन नहीं उसके कारण से कार्य को, वैसे ही बोलते हैं ईश्वर और जगत का कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल ही अलग है। जैसे कुमार मटका बनाता है, ऐसे ईश्वर जगत को बनाते हैं, और कुमार मटका का कनेक्शन कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ही अलग चीज है, केवल निमित्त मात्र है। ईश्वर निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है, ऐसे न्याय वैशेषिक सिद्धांत। उपादान कारण माने जिस चीज से बना हुआ है उसको उपादान कारण कहते हैं। मटका का उपादान कारण मट्टी है, मट्टी उपादान कारण है मटका का, लेकिन कुम्हार निमित्त कारण है। और ये कहते हैं कि ये उपादान कारण नहीं, ईश्वर जगत बना नहीं है, जैसे मटका मट्टी से निकला हुआ, और केवल निमित्त मात्र है, बनाने वाला है, ये आरंभवाद कहते हैं इसको एक सिद्धांत। और सांख्य मत में विशिष्टाद्वैत मत इत्यादि में परिणाम समझते हैं, ईश्वर बन गया है जगत, वो निमित्त मात्र नहीं है, उपादान कारण भी है। मतलब ईश्वर की शरीर ही जगत रूप में दिखाई देता है, लेकिन दिखाई देता कैसे, जब बदल गया हो वो अपने शरीर को परिवर्तन करके जगत रूप में दिखाई देता है। लेकिन शंकराचार्य इत्यादियों का मत है वो परिवर्तन करके नहीं बनाया ऐसा, वो केवल दिखाई देता है ऐसा। जैसे मरुमरीचिका है, मरुमरीचिका माने रेगिस्तान में पानी दिखाई देना जब पानी है ही नहीं, ये केवल दिखावट है, ये सच्चाई में वो परिवर्तन बनकर परिवर्तित होकर के जगत बना नहीं। ईश्वर मर गया नहीं, अभी भी जिंदा है। अगर बिल्कुल ही दूसरा बन गया तो वो पाएगा स्वरूप निकल गया होगा, अभी और कुछ बन गया हो, जैसे दही बन गया दूध से, ऐसा नहीं है। ये विवर्तवाद कहते हैं इसको। तीन वाद होते हैं, आरंभवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद। विवर्तवाद माने केवल दिखाई देता, बस जैसे रस्सा सर्प बन गया है। रस्सा सर्प बनना एक किस्म की परिणाम है, और दही दूध बनना और किस्म की, और किस बिल्कुल ही कनेक्शन नहीं रहना, बिल्कुल ही अलग, जैसा पत्थर और दूध है, कोई कनेक्शन आपस में, ऐसे रहना और किसी। अभी सर्वम ब्रह्म सर्वम के तत्त ब्रह्मा, सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसे समझते वक्त हम बहुत होशियार रहना पड़ता है। योग वासिष्ठ में बताया है, अगर कच्चा बुद्धि वाले चेले होते हैं जो इसका अर्थ नहीं समझेंगे, अगर उनके सामने आप कुछ ऐसा बात बोल दिया कि सर्वम के तत्त ब्रह्मा, आप नरक में जाएंगे और उनको भी नरक में ले जाएंगे जो सुनते हैं। इसलिए हमको नरक में मत डालो। अगर आप नहीं समझा, गलत समझ लिया, बैर इंसल्ट बैर इंजरी स्वामी जी हैज रिटन, फिर वो दोनों स्वामी हियर विल गो ऑन अब्यूजिंग एवरीबॉडी, दिस इज आई एम टीचिंग हिम लेसन, सो दैट दे मे बैर इंसल्ट बैर इंजरी, स्वामी जी गुरुदेव लिखा है किताब में। अगर हम नहीं बताया वो बेकार जाके किसी गाली दे देगा, वो क्यों ऐसा करते हो भाई, गुरुदेव क्या लिखा है। तो उसको बैर करने नहीं, हाँ इसलिए करता हूँ मैं। पुराणों गीता में लिखा है, आत्मा मरता नहीं करता नहीं, वो जाके मछली खाने लगेगा आदमी। रामकृष्ण परमहंस से सुना है, रामकृष्ण परमहंस ने कहा भैया भैया तो मछली खा रहे, मछली काटता नहीं, आप ही ने कहा कल, तो अजो नित्य शास पुराणों। रामकृष्ण परमहंस ने कहा देखो भाई चेला कैसा है, वो यही अर्थ समझता है हमारा बात का, ऐसी मतलब समझने नहीं चाहिए। सर्वम खेतत ब्रह्मा माने आप ब्रह्म है और कुछ ही ब्रह्म नहीं है, ऐसा मतलब नहीं है। इसका अर्थ समझना बहुत कठिन है, दिमाग खाने की बात है। अगर अर्थ इसका ठीक से निकला तो आप समाधि में घुस जाएंगे उसी मिनट में, मन पिघल जाएगा। अगर नहीं समझा तो बिल्कुल सिर दर्द पैदा करेगा, ये दोनों बात है। सर्वम खेतत ब्रह्मा अभी आधार साक्षात शरीर जगत की ईश्वर तत्व पर ब्रह्म तत्व है, और आधार और आधेय के अभिन्नत्व को जानना चाहिए। अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर है, ऐसा कहते हैं। निमित्त भी है और उपादान भी है, बनाने वाला भी वही है और जिससे बनाया हुआ वो जो माल सामान है वो भी वही अपने शरीर से निकला है। ईश्वर किसी बाहर से कोई मिट्टी लाके दुनिया बनाए नहीं है, उनके हाथ में कोई यंत्र गिंत्र नहीं होता है, और इस कारण से उनको उपादान कारण बोलना चाहिए, और उसको प्रेरणा करने वाले भी वही है, इसलिए निमित्त कारण भी है और दोनों अभिन्न है, इसलिए ईश्वर कहते हैं अभिन्न निमित्त उपादान कारण। इस दृष्टि से सर्व कुछ ब्रह्म है। सब कुछ का अर्थ है दृष्टा और दृश्य दोनों मिलकर के जोड़ करके एक चेतना मात्र रह जाता है, उसी को ब्रह्म कहना है। अभी देखो हम गलती कर सकते हैं इसको हम समझने में कि हम देखने वाला है ब्रह्म और दृश्य पदार्थ अलग है, ऐसे बात नहीं है। दृश्य पदार्थ बाहर जो है वो दृष्टा से मिल चुका है, और सुनने वाला देखने वाला समझने वाला और जिसको हम सुनते हैं और देखते हैं और समझते हैं ये दोनों एक ही है, इसलिए इसको समझने का कठिन होता है, क्योंकि दृष्टा और दृश्य को इकट्ठा समझना हमारे बस का काम नहीं है। हमारे मन ऐसे बना हुआ नहीं है जैसे कि वो दृष्टा को दृश्य के संपर्क से समझ सकता। जब आप किसी चीज को सोचते हैं आप कभी नहीं समझते हैं कि वो आपसे मिलित है, हम समझते हैं कि वो हमसे अलग है, इसलिए हम राग द्वेष में फंसा हुआ। लेकिन जब तक ऐसा राग द्वेष है, जब तक हमको भेदभावना है, जब तक दृश्य को अपनी चेतना से अलग समझते हैं, तब तक इस मंत्र का अर्थ हम नहीं समझ सकते। सर्वम खेतत ब्रह्मा अत्यंत शुद्ध बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। साधना चतुष्टय संपन्न है, यम नियम युक्त है, ऐसे शुद्ध पुरुष जिनकी मन साफ है, सत्वगुण संपन्न है और तीव्र मूढ़ इच्छा जिसको है, ऐसे साधक ही इस मंत्र का अर्थ समझ सकता है सर्वम खेतत ब्रह्मा, क्योंकि यही सारे वेदांत का मूल मंत्र है सर्वम खेतत ब्रह्मा, और इसके कारण आयमात्मा ब्रह्मा। अगर सब कुछ भी वही है, आप भी वही है, सब कुछ के अंदर आप भी आ गए, आप बाहर थोड़ी है उससे। इसलिए अयम आत्मा, जिसको आप अपना आत्मा समझते हैं, यह भी उसी में मिला हुआ है, उसी में शामिल है। हरे कलहरे समुद्र ही है, इसका अर्थ है जो कुछ व्यक्तिगत लहरा है वो भी समुद्र ही। सोचते वक्त इकट्ठा सोचेंगे, कलेक्टिव थॉट विल बी देयर एट दैट टाइम। अलग अलग मनुष्य अलग अलग ढंग से नहीं सोचेगा उस वक्त। समुद्र जब सोचेगा सारे लहरें सोचेंगे एकदम, क्योंकि समुद्र उनके माता है, आधार है। वैसे ही ईश्वर तत्व को समझ करके, सर्वमुखी तत्व ब्रह्म अर्थ को समझ करके जब हम सोचना करना शुरू करेंगे, हमें किसी प्रकार की दुष्टता या अनाचारता पैदा नहीं हो सकता। हम दुष्ट बुद्धि होते हैं इसलिए कि हम अपने से अलग लोगों को समझते हैं, उनको उनकी माल हड़पना चाहते हैं और उनको धोखा देना चाहते हैं। ये सब कारण यही इसका कारण यही है कि हम अपने को अलग समझ गए। और जिस युक्ति के द्वारा आप सर्वमुखेत ब्रह्मा इस मंत्र का अर्थ समझा है, इसी युक्ति से आप समझना चाहिए कि आप भी उसमें शामिल है। बहुत मुश्किल है समझना इसको। अयम आत्मा ब्रह्म, सो यमात्मा चतुष्पाद। अभी इस पर, इस ज्ञान पर पहुंचने का तरीका बताते हैं। इतने कठिन बातें ये आपके दिमाग में नहीं बैठे गए, और इसके वास्ते अरुंधति न्याय के द्वारा, जैसा कल बताया था हमने, थोड़ा 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 आस्ते 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 आपको स्थूल दृष्टि से सूक्ष्म दृष्टि में पहुंचाने के लिए कोशिश कर रही है मांडूक्य उपनिषद। सो यमात्मा चतुष्पाद, चार पाद है इस आत्मा का। चार पाद क्या होता है? चार पैर। और व्याख्याकार आचार्य शंकर बोलते हैं चार पैर माने गाय के चार पैर को माफी नहीं। गाय के चार पैर बिल्कुल अलग अलग है, इधर एक इधर एक इधर एक, कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन रुपया में चार आना होता है, देखो ये भी चार पाद होता है। ये सच्चा उदाहरण है। और रुपया में चार चार आना, चार चार है, लेकिन वो दिखाई देता नहीं है। देखने से एक ही दिखाई देता, एक रुपया, लेकिन उसके अंदर चार चार आना चार है। गाय के पैर का माफी नहीं। वैसे ही ये आत्मा में चार पाद माने रुपया में चार आना का माफी समझना चाहिए, गाय के पैर का माफी नहीं समझे। वो अलग अलग चार पैर वाला नहीं है, चार पाई जैसे। ये अखंड आत्मा है। चार पाद का अर्थ है चार किस्म की समझने की रास्ता, चार ढंग से, चार रास्ते से हम आत्मा का ज्ञान पर पहुंच सकते हैं। जैसे चार योग बोलते हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राज योग, ये तो अलग अलग किस्म का नहीं है, वो तो एक ही योग का अलग प्रकार है बस। अभी चार पाद बताया, चार पाद माने चार प्रकार के अनुभव हम पाते हैं हमारे जीवन में। चार प्रकार के अनुभव या कौन सी, हमारे अनुभव तो कई होते हैं, दुख सुख और लाभ नष्ट इत्यादि अलग अलग किस्म की अनुभव हमारा होता है। लेकिन इसमें जितने भी अनुभव हमारे सैकड़ों होते हैं, इनके मूलाधार चार प्रकार के अनुभव है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरी। चार ही और अनुभव होते, जागरित स्थान, पढ़ो जागरित स्थान,
जागरित स्थानो बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एकोन विंशति मुखः स्थूल भुग वैश्वानर प्रथमं पादः।
अभी चार पाद में पहला पाद बताते हैं स्थूल पाद। स्थूल पाद माने जिसको हम जरा सा आसानी से समझ सकते हैं और जो हमारा सामने बिल्कुल है। जागृत स्थान, जागृत नाम की आत्मा की जो स्थान है, ये किस प्रकार का है? इसका प्रकार यही है बाह्य ज्ञान, बहिःप्रज्ञा। जिनकी चेतना हमेशा बहिर्मुख है, एक्सट्रोवर्टेड कॉन्शियसनेस, दिस इज वेकिंग स्टेट। बहिःप्रज्ञा, चेतना अपने में जगते ही किसी चीज की, बाहर की चीज की याद रखेगा। जब चेतना हमारे अंदर काम करना शुरू करती है, एकदम विषय चिंतन करेगा, बाहर कौन है, बाहर क्या चीज है, इससे हमारा क्या संबंध है, क्या करूं मैं इसके द्वारा, इत्यादि सोचते रहते हैं, अपने बारे में किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। आप देखिए सुबह शाम तक अपने के बारे में कितना शब्द सोचा आपने, कभी नहीं, अपना होश भी नहीं रहता, हमेशा दूसरों का होश रहता। बाहर कीजिए, हम इतना व्यस्त रहते हैं हमारे क्रियाओं में कामों में कि उसी को हम अलग समझ करके, उसी को सब कुछ मान करके हमारा सद अस्तित्व को भी भूल जाते हैं। यही जागृत स्थान की विशेषता है। दृष्ट या देखने वाला, जानने वाला स्वयं जो है, इसको बिल्कुल ही भूल करके, उसके सत्ता को भी नहीं जान करके और मान करके, बाहर की चीजों पर हमेशा चिंतन करते रहना जो है, यही जागृत स्थिति की विशेष रूपता है। जागृत जागृत स्थान बहिःप्रज्ञा। अभी ये जागृत स्थान दो प्रकार का होता है, एक समष्टि जागृत स्थान और व्यष्टि जागृत स्थान। समष्टि माने ब्रह्मांड की दृष्टि से बताया हुआ चेतन, और व्यष्टि माने ईश्वर जीव की दृष्टि से व्यक्त जो चेतना है, वो एक अलग किस्म का है। और ये मांडुक्य उपनिषद में दो प्रकार का वर्णन आता है, व्यष्टि और समष्टि दोनों। हर एक मंत्र में आप देखेंगे इस तरफ थोड़ा सा आधा व्यष्टि के बाद बताएगा, उस तरफ जरा सा समष्टि के बाद बताएगा। अभी जागृत स्थान माने विश्व को विषय रूप में जानना, इसको दो प्रकार से हम जान सकते हैं। विषय को आप दो प्रकार से बहिर्मुख होकर के कैसे जान सकते हैं, जीव की दृष्टि से विश्व की जो विषय जो है वो बिल्कुल ही अपने से अलग है, कटा हुआ है, जैसे हमारी दृष्टि है ये मकान है, हमसे किसी प्रकार की कनेक्शन इससे नहीं है। उसको कुछ हानि पहुंच गया तो मुझे हानि नहीं पहुंचता, अगर मुझे कुछ हुआ तो अब उसको कुछ नहीं होता। इसका अर्थ है दृष्ट दृश्य बिल्कुल ही अलग है, यही जीव की दृष्टि से जागृत स्थान की विशेषता है। लेकिन समष्टि रूप में जिसको वैश्वानर बोलते हैं, जो शब्द इसमें आ गया है, वैश्वानर प्रथम पाद, विश्व बोलते हैं जीव को जागृत स्थान में, वैश्वानर बोलते हैं ईश्वर को जागृत स्थान। अभी ये जागृत स्थान वैश्वानर भी है और विश्व भी है। विश्व जीव की दृष्टि है, वैश्वानर ईश्वर दृष्टि। और जब जीव की दृष्टि से हम जागृत स्थान को समझेंगे, तब हम जानना चाहिए ये विषय चेतना जो है वो बिल्कुल ही अपने से विषय को अलग समझ लिया है। लेकिन व्यष्टि का अर्थ जब ऐसा है, समष्टि में ऐसा नहीं है। वहां वैश्वानर की जागृत स्थान में विषय जो है वो अपने से बाहर नहीं रहता, जैसे अपने शरीर के अंग है, सप्तांग एक वो नविंशति मुखा इत्यादि बताते हैं, वो कल बताएंगे। ये जैसे हमारे अंगों के तरफ हम किसी प्रकार की भेद बुद्धि नहीं देखते, भागवत में श्लोक आता है, श्रीमद् भागवत में शायद द्वितीय स्कंद तृतीय स्कंद में, यथा पुमा न स्वांगेशु शिर पाण्यादिशु क्वचित पारक के बुद्धिम गुरुते एवं भूतेषु तत्वधि। ऐसा देखो क्या देखते हैं, देखो भाई हमारा अंगुली है, हाथ है, नाक है, मुंह है, इसकी तरफ कोई राग है या द्वेष है, देवता तो है, ये भी एक विषय है क्योंकि हम देखते हैं, लेकिन ना इसको प्यार करता हूं मैं, ना इसे द्वेष करता हूं मैं, कहता नहीं कि ये हमारा हाथ है, ये तुम्हारा और किसी का है। जैसे अपने सिर पाणी हाथ पैर इत्यादि में किसी प्रकार की भेद भावना को हम प्रकट अपने जीवन में नहीं करते, इसी प्रकार ईश्वर किसी प्रकार की भेद भावना से विश्व को नहीं देखते। जैसे हरेक अंग हमारा ही शरीर है, हम ही है समझो, इसी प्रकार हरेक चीज विश्व विश्व में जो है वो ईश्वर की अंग है और साक्षात ईश्वर ही, यही वैश्वानर की दृष्टि है। लेकिन विश्व जो है जीव है वो ऐसा नहीं समझता, ये बिल्कुल ही अलग है, इसलिए इनसे राग और द्वेष रखता है। ये विश्व वैश्वानर का विशेषता है। और सप्तांग एकोन विंशति का अर्थ कल बताएंगे। हरि ओम तत्सत्।